नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मिहाय चिकसेंटमिहाय की पुस्तक क्रिएटिविटी फ्लो एंड द साइकोलॉजी ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेंशन रचनात्मकता के मनोविज्ञान पर आधारित एक विश्लेषणात्मक गैर कथा कृति है। यह पुस्तक केवल यह नहीं पूछती कि कुछ लोग नए विचार कैसे सोचते हैं, बल्कि यह भी जांचती है कि किसी विचार को समाज वास्तव में रचनात्मक कब मानता है। लेखक अपने फ्लो सिद्धांत यानी गहन एकाग्रता और काम में पूर्ण तल्लीनता की अवस्था को वैज्ञानिक खोज, कला, लेखन, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन में रचनात्मक उपलब्धि से जोड़ते हैं। लगभग 100 विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त लोगों के साक्षात्कारों और लंबे शोध के आधार पर पुस्तक अकेले प्रतिभाशाली व्यक्ति की लोकप्रिय छवि को चुनौती देती है। इसके अनुसार बड़ी रचनात्मकता व्यक्ति ज्ञान के स्थापित क्षेत्र और उस क्षेत्र के निर्णायक सामाजिक समूहों के बीच संबंध से पैदा होती है। उद्देश्य कोई त्वरित रचनात्मकता सूत्र देना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि खोज और आविष्कार किन मानसिक आदतों, संस्थागत स्थितियों और सांस्कृतिक अवसरों से संभव होते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, रचनात्मकता को व्यक्ति, ज्ञान क्षेत्र और सामाजिक स्वीकृति की व्यवस्था के रूप में समझना। पुस्तक का सबसे अलग और प्रभावशाली तर्क यह है कि रचनात्मकता केवल किसी व्यक्ति के भीतर मौजूद गुण नहीं है। चिकसेंटमिहाय के अनुसार किसी नए विचार, उत्पाद या कार्य को तब व्यापक अर्थ में रचनात्मक कहा जाता है जब वह किसी स्थापित ज्ञान क्षेत्र को बदल दे। इस प्रक्रिया में तीन हिस्से जुड़े होते हैं। पहला है व्यक्ति, जो नया संयोजन, प्रश्न या समाधान प्रस्तुत करता है। दूसरा है डोमेन, अर्थात किसी क्षेत्र के नियम, प्रतीक, तकनीक और संचित ज्ञान, जैसे भौतिकी, संगीत या चित्रकला। तीसरा है फील्ड, यानी वे विशेषज्ञ, संस्थाएं और सहकर्मी जो तय करते हैं कि नया योगदान मान्य है या नहीं। यह ढांचा अकेले जीनियस की कथा को सीमित करता है। किसी वैज्ञानिक की अंतर्दृष्टि तब तक प्रभावी नहीं बनती जब तक उसके क्षेत्र में उसे समझने की भाषा, पूर्ववर्ती ज्ञान और जांच की व्यवस्था न हो। इसी तरह किसी कलाकार की नवीनता को दर्शक, आलोचक, संरक्षक और कला संस्थाएं संदर्भ देती हैं। लेखक व्यक्ति की भूमिका कम नहीं करते, बल्कि बताते हैं कि असाधारण उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत क्षमता और सामाजिक परिस्थितियों दोनों का मेल जरूरी है। इसलिए रचनात्मकता बढ़ाने की चर्चा केवल व्यक्तिगत आदतों तक सीमित नहीं रह सकती। शिक्षा, संस्थान, विशेषज्ञ समुदाय और ज्ञान तक पहुंच भी उतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, फ्लो की अवस्था, कठिन चुनौती और रचनात्मक काम में गहरी तल्लीनता। फ्लो इस पुस्तक की केंद्रीय मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य में इतना केंद्रित होता है कि ध्यान भटकने लगता है, समय का अनुभव बदल सकता है और काम स्वयं में संतोष देने लगता है। लेखक रचनात्मक कार्य को केवल परिणाम, प्रसिद्धि या आर्थिक पुरस्कार से प्रेरित गतिविधि नहीं मानते। अनेक गहरे रचनात्मक प्रयासों में व्यक्ति समस्या, माध्यम या विचार की जटिलता से जुड़ने के कारण काम करता है। फ्लो तब अधिक संभव होता है जब चुनौती व्यक्ति की क्षमताओं के अनुरूप किंतु उन्हें खींचने वाली हो। बहुत आसान काम ऊब पैदा कर सकता है, जबकि अत्यधिक कठिन काम चिंता या असहायता बढ़ा सकता है। रचनात्मक लोग इस संतुलन को स्थिर रूप से नहीं पाते, बल्कि कौशल बढ़ाकर अधिक जटिल समस्याओं की ओर जाते हैं। इसीलिए रचनात्मक संतोष आराम से नहीं, उद्देश्यपूर्ण कठिनाई से जुड़ा होता है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि एकाग्र काम के लिए स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त कौशल, त्वरित प्रतिक्रिया और बाहरी बाधाओं से कुछ दूरी उपयोगी है। फिर भी फ्लो को जादुई अवस्था मानना गलत होगा। यह तैयारी, विषयगत दक्षता और निरंतर अभ्यास का विकल्प नहीं है। फ्लो व्यक्ति को लंबे समय तक जटिल काम में लगाए रखता है, जबकि उस काम की गुणवत्ता ज्ञान, आलोचना और संशोधन से विकसित होती है। तीसरा, विरोधी गुणों का सहअस्तित्व और रचनात्मक व्यक्तित्व की जटिलता। चिकसेंटमिहाय रचनात्मक व्यक्तियों को किसी एक सरल व्यक्तित्व प्रकार में नहीं बांधते। साक्षात्कारों के आधार पर वे बताते हैं कि उनमें अक्सर परस्पर विरोधी लगने वाले गुण साथ मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, वे ऊर्जा से भरपूर होकर लंबे समय तक काम कर सकते हैं, फिर भी विश्राम और चिंतन की आवश्यकता समझते हैं। वे कल्पनाशील होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की तकनीकी सीमाओं और नियमों का अनुशासन भी सीखते हैं। उनमें आत्मविश्वास हो सकता है, पर गंभीर काम के दौरान आत्मसंदेह और आलोचना के प्रति खुलापन भी रहता है। यह द्वंद्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल मुक्त कल्पना पर्याप्त नहीं होती। बिना कौशल के कल्पना कार्य रूप नहीं लेती, और केवल अनुशासन बिना नए प्रश्न के दोहराव बन सकता है। पुस्तक लोकप्रिय धारणा कि रचनात्मकता अनिवार्य रूप से पीड़ा, असामाजिकता या अव्यवस्था का परिणाम है को भी सावधानी से चुनौती देती है। कुछ रचनाकार कठिन स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन असाधारण काम को मानसिक यातना का अपरिहार्य फल मानना भ्रामक है। लेखक की रुचि उस क्षमता में है जिससे लोग जिज्ञासा, खेल, दृढ़ता और आलोचनात्मक विवेक को एक साथ साधते हैं। व्यावहारिक अर्थ में यह पाठ उपयोगी है। रचनात्मक विकास के लिए व्यक्ति को केवल अधिक मुक्त या अधिक अनुशासित बनने का आदेश नहीं चाहिए, उसे परिस्थिति के अनुसार दोनों क्षमताओं के बीच आने जाने की आदत विकसित करनी होती है। चौथा, संयोग, सही समय और सांस्कृतिक तैयारी के बिना उपलब्धि की सीमाएं। पुस्तक रचनात्मक उपलब्धि में समय और संदर्भ की भूमिका को गंभीरता से रखती है। कोई विचार कितना भी मौलिक क्यों न हो, वह तभी किसी क्षेत्र को बदल सकता है जब उस क्षेत्र में संबंधित प्रश्न, उपकरण, भाषा और ग्रहणशीलता मौजूद हो। इसलिए समान प्रतिभा वाले दो लोगों के अवसर समान नहीं होते। किसी युग में वैज्ञानिक उपकरणों की उपलब्धता, किसी कला परंपरा में संरक्षण या किसी संस्था में नए विचारों के प्रति खुलापन सभी रचनात्मक परिणाम को प्रभावित करते हैं। यह दृष्टि संयोग को केवल भाग्य नहीं मानती। संयोग अक्सर तैयार व्यक्ति और तैयार क्षेत्र के मिलन से अर्थपूर्ण बनता है। जो व्यक्ति अपने डोमेन का इतिहास, वर्तमान समस्याएं और संभावित सीमाएं समझता है, वह उभरते अवसर को पहचानने में बेहतर स्थिति में होता है। साथ ही फील्ड की स्वीकृति प्रक्रिया कभी निष्पक्ष या त्वरित नहीं होती। विशेषज्ञ समुदायों की प्राथमिकताएं, संसाधन और मानदंड तय करते हैं कि किन विचारों को ध्यान मिलेगा। इस कारण पुस्तक संस्थागत जिम्मेदारी का प्रश्न उठाती है। यदि समाज नवाचार चाहता है तो उसे केवल प्रतिभा खोजने के बजाय शिक्षा, अनुसंधान, कला, संवाद और निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी होंगी। यह विश्लेषण रचनात्मकता को व्यक्तिगत आत्म सुधार की संकीर्ण भाषा से निकालकर सांस्कृतिक विकास के प्रश्न से जोड़ता है। अंत में महान उपलब्धि पर केंद्रित अध्ययन और रोजमर्रा की रचनात्मकता से उसका अंतर। इस पुस्तक का दायरा जानबूझकर उस रचनात्मकता पर केंद्रित है जो किसी डोमेन में स्थायी बदलाव लाती है। लेखक इसे कभी कभी बड़े सी वाली रचनात्मकता के रूप में अलग करते हैं ताकि रोजमर्रा के उपयोगी, सुंदर या कल्पनाशील कामों से भेद स्पष्ट हो सके। अच्छा भोजन बनाना, किसी समस्या का निजी समाधान ढूंढना या बच्चे का कल्पनाशील खेल मूल्यहीन नहीं है, लेकिन वे अपने आप में कला, विज्ञान या अन्य क्षेत्र के नियम नहीं बदलते। यह सीमा पुस्तक को गहराई देती है क्योंकि लेखक को परिपक्व करियर वाले वैज्ञानिकों, कलाकारों और अन्य सृजनकर्ताओं के अनुभवों से यह पूछने का अवसर मिलता है कि दीर्घकालिक योगदान कैसे बनता है। दूसरी ओर यही सीमा इसकी व्यावहारिक सीमा भी है। पाठक को यहाँ हर दिन अधिक कल्पनाशील बनने के लिए चरणबद्ध अभ्यास योजना नहीं मिलेगी। इसके बजाय उसे उच्च स्तरीय सृजन के पीछे काम करने वाली स्थितियों का ढांचा मिलेगा। यह अंतर समझना जरूरी है। पुस्तक का उपयोग सीधे नकल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में गहरी दक्षता, अर्थपूर्ण समस्याओं, केंद्रित काम और गुणवत्तापूर्ण प्रतिक्रिया की जरूरत पहचानने के लिए किया जा सकता है। इसकी केंद्रीय सीख यह नहीं कि हर व्यक्ति प्रसिद्ध आविष्कारक बने। सीख यह है कि रचनात्मक योगदान को समझने के लिए निजी प्रेरणा के साथ ज्ञान परंपरा और सामाजिक मान्यता दोनों को देखना होगा। निष्कर्ष में, क्रिएटिविटी उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो रचनात्मकता को रहस्यमय जन्मजात प्रतिभा मानने के बजाय उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार समझना चाहते हैं। कलाकार, शोधकर्ता, शिक्षक, डिजाइनर, प्रबंधक और नीति से जुड़े लोग इससे अलग अलग स्तरों पर लाभ ले सकते हैं। व्यक्ति के स्तर पर पुस्तक गहरे काम, कौशल और चुनौती के संतुलन का महत्व स्पष्ट करती है। संस्थागत स्तर पर यह बताती है कि प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा भर पर्याप्त नहीं है, ज्ञान क्षेत्रों, मूल्यांकन प्रणालियों और अवसरों को भी विकसित करना पड़ता है। बौद्धिक रूप से इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दो अधूरी धारणाओं से बचाती है। पहली कि रचनात्मकता केवल निजी प्रेरणा है, दूसरी कि बाहरी परिस्थितियां ही सब कुछ तय करती हैं। लेखक का ढांचा दिखाता है कि नवीनता व्यक्तिगत पहल और सांस्कृतिक संरचना के लगातार संवाद से बनती है। समान विषय की कई पुस्तकें आदतों, विचार उत्पन्न करने की तकनीकों या प्रेरक सलाह पर केंद्रित रहती हैं। यह पुस्तक उनसे अलग है क्योंकि यह फ्लो के अनुभव को इतिहास, विशेषज्ञता, संस्थानों और सामाजिक स्वीकृति के प्रश्नों से जोड़ती है। हालांकि त्वरित अभ्यास चाहने वाले पाठक को यह कम निर्देशात्मक लग सकती है, इसकी शक्ति इसी व्यापकता में है। यह रचनात्मकता को केवल बेहतर प्रदर्शन का साधन नहीं, बल्कि मानव ज्ञान और संस्कृति को बदलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने का परिपक्व दृष्टिकोण देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मिहाली सिक्सेंटमिहाली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।